Sarika Didi belongs from Delhi, Harinagar Center, and Didi has done post-graduation diploma in value education and spirituality in 2015. She has also done PG Master Science in Computers, and Didi has been associated with Brahma Kumaris for last 10 years, and wo apni bahut proactive, positive services, security wing and sports wing do de rahi hai as a zonal coordinator. So please, zordar taaliyon ke saath is cheez ko welcome kiya jaye. In the past, Didi has conducted sessions in Delhi Police, Indian Army, Indian Air Force and many paramilitary forces. Didi takes care of stress management and value education in all the armed forces. So aaj Didi hamare liye aisa hi bahut acha topic leke aaye hain jo hamare players ke aur aam zindagi mein bahut important hai, and that topic is managing challenges. So over to you Didi, thank you so much.
Om Shanti. Om Shanti.
Om Shanti.
बहुत ही फेमस नॉवल राइटर रहे हैं मिस्टर डेनिफल डेफो, और अक्सर उनकी नॉवल्स में किरदार रहा है रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन क्रूसो को लेकर उन्होंने एक बहुत ही फेमस नॉवल लिखा था जिसका नाम ही था रॉबिन्सन क्रूसो, और उसमें उस किरदार के लिए जो कहानी लिखी गई थी वो बहुत ही सुंदर फेमस थी. उसका कुछ पार्ट मैं जरूर सुनाना चाहूंगी. एक बार रॉबिन्सन क्रूसो एक जहाज में ट्रेवल कर रहे थे, कुछ जहाज के अन्य यात्री भी 50-60 यात्रियों के साथ. लेकिन जहाज जब बीच समंदर में था तो बहुत ही तेज एक लहर आई और उस जहाज को डुबा दिया. सभी सहयोगी, सभी यात्री ऐसी दुर्घटना में मारे गए, लेकिन एक रॉबिन्सन क्रूसो एक टापू पर बैठे और देखा कि मेरे सामने सारी लाशें ही लाशें बैठी हैं. जहां मैं देखता हूं वहां सिर्फ और सिर्फ मौत नजर आती है. और ऐसी दुखद घड़ी में जब वो उस टापू पर बैठे थे तो वो एक बात सोच रहे थे कि अब मैं यहां अगले कुछ समय के लिए कैसे बने रह सकता हूं, कहीं ये मौत मुझे भी ना अपने में ले ले. तुरंत अपना बैग, जो पिट्ठू बैग था, वो उतारते हैं और अपनी डायरी और पेन में पेन से कुछ बातें लिखना शुरू करते हैं. जब वो मां बचे रहे तो कुछ दिन जब उनके बीते तो उन्होंने महसूस किया कि वो बातें उसको, रॉबिन्सन क्रूसो को कितनी ज्यादा मोटिवेट कर रही थी वहां जीवन को बचाए रखने में. और वो बातें थी, जैसे जैसे शाम हो रही थी उनका डर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा था कि मैं कैसे यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं. लेकिन वो तीन बातें उन्हें अगले 18 दिन वहां सुरक्षित रखती हैं. और वो तीन बातें क्या थी? उन्होंने सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद किया कि हे परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, मैं जहां देखता हूं मुझे लाशें नजर आती है, मुझे मौत सामने नजर आती है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहां पर अभी भी सुरक्षित बचा हुआ हूं. दूसरी बात, मैं जहां नजर दौड़ाता हूं, जहां थोड़े थोड़े कदमों से अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर जाता हूं तो मुझे कोई शेल्टर, कोई व्यक्ति, कोई घर नजर नहीं आता जो मुझे अपने घर में शरण दे सके, अपने शेल्टर में बुला सके. लेकिन मुझे ये यकीन है जो मेरे पिट्ठू बैग में थोड़ा सा भोजन है वो मुझे अगले कई दिनों तक जीवित रख सकता है. और तीसरी बात, जहां तक नजर दौड़ाता हूं वहां कोई व्यक्ति तो नजर नहीं आता, लेकिन शायद कुछ ऐसे जंगली जानवर मुझे जरूर अपने आगोश में ले सकते हैं। वो मौत पानी की वजह से तो नहीं होगी, लेकिन शायद उन जानवरों का मैं भोजन बन सकता हूं। लेकिन फिर भी मेरे जो इस छोटे से बैग में छोटे से साधन उपलब्ध हैं, मैं जरूर अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता हूं। इन सभी के लिए हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जोरदार तालियां। क्या ये चैलेंज नहीं था? क्या रॉबिन्सन क्रूसो के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं थी? क्या ये दुर्घटना, ये समस्या, ये सरकमस्टांस उसके लिए नहीं थी? लेकिन फिर भी उसने वो चीजें अपनी डायरी में लिखी जो चीजें उसके पास उपलब्ध थी, जो चीजें उसे वहां पर जीवित रहने के लिए जरूर बनाए रख सकती थी। लेकिन उन्होंने उस चीज का वहां जिक्र नहीं किया जो चीजें नेगेटिव थी। तो मैं आप सब से जो इस कॉन्फ्रेंस में यहां पर हिस्सा बने हैं, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या जीवन में आने वाली घटनाएं हमें कभी हताश निराश नहीं करती? लेकिन जरूर हम अपने पास एक डायरी बनाएं जिसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो और एक नेगेटिव। नेगेटिव को हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करें और पॉजिटिविटी को अपने में लेकर आए। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी प्राप्तियों, कुछ ऐसी बातों का जिक्र उस पॉजिटिव डायरी में जरूर हो जो मुझे अपने जीवन के संघर्ष को, अपने जीवन के चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे जरूर मुझे लेकर जाए इस जीवन में। तो इसलिए आज का टॉपिक ही है मैनेजिंग चैलेंजेस। ये तो बड़ों की बात है कि कैसे हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं या छोटी समस्याएं भी आती हैं, कभी ना कभी उन छोटी समस्याओं में भी हम बिखर जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे के लिए शायद एग्जाम बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, इजंट इट? यस और नो? और आजकल सिर्फ बच्चों के लिए ही एग्जाम चैलेंज नहीं है, आजकल तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साथ पेरेंट्स को ज्यादा दुख होता है अगर बच्चा नहीं पढ़ता। तो ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा अपने घर में एंटर करता है और उसे बड़ी खुशी होती है कि आज तो मेरी इंग्लिश की टीचर ने मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखने के लिए दिया है और उस पैराग्राफ का जो टॉपिक रहेगा वो होगा पॉजिटिविटी। तो उसको लगा कि मैं अपने पिताजी से जरूर आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे आज ये छोटा सा पैराग्राफ लिखने में जरूर हेल्प करें। लेकिन जैसा ही बच्चा स्कूल ओवर होने के बाद घर में एंटर करता है और अपने होमवर्क के बारे में सोच ही रहा होता है, तो उसके साथ ही साथ उसके पिता भी उसके घर में एंटर करते हैं। और पिता जब लिविंग एरिया में आते हैं और बच्चे को देखते हैं तो बच्चे को इग्नोर कर वो अपनी ही समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। और पिता की समस्या क्या है? पिता अपनी ही समस्याओं में, मुझे बिल पे करना है, मुझे ईएमआई भरनी है और बहुत सारे चैलेंज, मुझे एक नया घर जो खरीदा है उसके विषय में सोचना है, बहुत सारे पैसे जुटाने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर जो वो अपने घर में एंटर करते हैं। तो बच्चा देखता है कि मेरी तरफ तो देखा भी नहीं, ये तो अपनी ही समस्याओं में जूझ रहे हैं, अपनी ही समस्याओं से बहुत ज्यादा टेंस्ड है। तो बच्चा भोजन करके अपने घर, अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। लेकिन जब पिता शाम को उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा अपनी नोटबुक के साथ सोया हुआ है, लेकिन वहीं उनकी मदर जो है, बच्चे की मदर, इवनिंग तक उनके पिता को ये जरूर बता देती है कि आज उसका मन था कि उसका होमवर्क आप कराएं। और इसी बात से उनका मन भर आता है और वो जब घर में अपने बच्चे के रूम में एंटर करते हैं तो देखते हैं जो पास की नोटबुक है उसने तो पॉजिटिविटी पर पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है। और क्या लिखा, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। उस पैराग्राफ में, उस ऐसे में कहें, उसने लिखा कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मेरी मदर मुझे कड़वी कड़वी दवाइयां, जब मुझे फीवर होता था तो मुझे कड़वी दवाइयां देती थी, लेकिन जब उस फीवर को उतरने के बाद मैं बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलकूद में जब मैं विन करता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि शायद उन कड़वी दवाइयों का असर ही है कि आज मैं अपने ही फ्रेंड्स के साथ पूरी तरीके से खेल पा रहा हूं। दूसरा, जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जब रोज डेली स्कूल जाना पड़ता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सुबह सुबह उठना होता था और मम्मी मुझे जल्दी उठा देती थी, यूनिफॉर्म पहनाती थी, नहलाती थी, जो कि मुझे सुबह सुबह नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन शायद गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ही वही था जब हम रोज स्कूल जाते थे, तो उसका आनंद समझ में आया कि वो समर वेकेशंस कितना आनंद देती थी। ऐसे कुछ पॉइंट्स उसने जब पॉजिटिविटी के लिखे तो पिता ने पढ़कर भी एक लेसन ले लिया कि कैसे मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मैं भी एंटर किया था घर में और बच्चे ने भी एंटर किया, लेकिन मैं बहुत स्ट्रेस में था, मैंने कोई पॉजिटिविटी एटीट्यूड में नहीं अपनाई, लेकिन मेरे बच्चे ने बहुत ही सुंदर पॉजिटिविटी पर ये जो ऐसे लिखा है, शायद मैं तो इतना अच्छा होमवर्क नहीं करा पाता जितना मेरे बच्चे ने खुद वो होमवर्क किया। Isn't it? तो आप सब भी जरूर ऐसे ही चैलेंजेस को अपने जीवन में फेस कर रहे होंगे, क्योंकि लाइफ इज ए जर्नी, इस जर्नी में कोई ना कोई चैलेंजेस तो आते ही हैं। आप भी देखिए आप कितनी दूर से, दिल्ली से, अलग अलग हिस्सों से यहां पर आए हैं, लेकिन जब आप ज्ञान सरोवर के प्रांगण में जैसे ही आपने एंटर किया होगा तो यहाँ की पॉजिटिविटी और प्योरिटी ने आपके मन को कैसा कर दिया, कैसा कर दिया, बहुत ही सुंदर कहेंगे कि पॉजिटिविटी से भर दिया, है ना। वो सारी नेगेटिविटी, ये वो सारे थॉट्स आपके मन से तुरंत निकल गए जैसे ही आप यहाँ की हवाओं और फिजाओं में आपने एंटर किया। तो मैनेज करना चैलेंजेस को, ये हम सबके हाथ में ही होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में। आप सबने शायद बचपन में या किसी भी क्लास में इस 9-डॉट प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। जस्ट रेज योर हैंड्स अगर आपने ये सॉल्व किया है कभी या देखा है। 1, एनिमन एल्स, 2, 3, ओके। इसके पीछे एक छोटा सा आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। ये 9 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे 2 बातें हैं कि आपको इन सभी 9 डॉट्स को एक ही साथ ज्वाइन करना है। मतलब अगर आप एक बार पेन से शुरू करते हैं तो आपका पेन का पिन उठना नहीं चाहिए, पेन आप उठा नहीं सकते। और दूसरा, ओनली 4 लाइन्स में इन सभी 9 डॉट्स को ज्वाइन करना है। इन सभी 9 डॉट्स को 4 लाइन्स में ही मिलाना है। और जब आप एक बार पेन से शुरू करते हैं या आप अपनी फिंगर से, जैसे मैं पीछे देख रही हूं कई लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी फिंगर को उठा नहीं सकते, वो कॉन्टिन्यूस 4 लाइन्स में होना चाहिए। ट्राई योर सेल्फ, आपके पास नोटबुक है, पेन है, उसमें ट्राई करें। हो गया? कैसे आप बताएंगे थोड़ा सा इस? प्लीज राइट, ओके। इसको कहते हैं गुड। बैठिए, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, राइट। आर्मी में कहावत है कि जब भी दुश्मन आपको वार करने की कोशिश करता है या कोई भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन फील्ड फॉर्मेशंस में आपको देखने को मिलती है, तो आप अपने माइंडसेट को उस दायरे से बाहर रखिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो आप जब आप इस 9 डॉट्स के अंदर बैठकर सोचेंगे कि 4 लाइनों में ये 9 डॉट्स को एक साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 लाइन्स अगर मैं आपको बोलूं तो आप सब कर लेंगे, लेकिन 4 लाइन्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप 9 डॉट्स के इर्द गिर्द ही अपने मन को और बुद्धि को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब आप बाहर से सोचते हैं तो ये पॉसिबल है। कैसे? फर्स्ट लाइन बिल्कुल नीचे से शुरू कर रहे हैं और जहां एरो जा रहा है इट मींस कि वो लाइन वहां पर खत्म हो रही है। अब यहीं से हम शुरू करेंगे क्योंकि आपका पैन नहीं उठेगा। नेक्स्ट टू लाइंस, सबको क्लियर है? टू लाइंस, ओके। देन थर्ड लाइन, वो भी बाहर से ही जा रही है, एंड फोर, ओके। हो गया, तालियां तो बजा सकते हैं। इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो हम उस प्रॉब्लम के अंदर बैठकर सोचते हैं। मैं एक रियल घटना से जरूर आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। हम दिल्ली से हैं और जो भी दिल्ली से आए उनको मालूम है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शाद्री में है, शास्त्री पार्क, और वहां पूरे दिल्ली मेट्रो का सिमुलेशन स्थापित है। इट मींस कि पूरे दिल्ली में या और स्टेट्स में भी दिल्ली मेट्रो या मेट्रो कैसे काम करती है उसका सिमुलेशन वहां पर मौजूद है, आप वहां पर विजिट भी कर सकते हैं। एनीवे, वहां पर हम, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में जो सिक्योरिटी का कार्य है वो CISF देखती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। तो हम CISF के लिए कार्यक्रम कर रहे थे और वो डेढ़ दिन का कार्यक्रम था। ये रियल घटना है। जब हमने फोरनून सेशन जो कि 11 से 12:30 तक का था वो कंप्लीट किया और उनको लंच ब्रेक के लिए 250 लोग थे और वहां का बहुत ही सुंदर एक हॉल है, मल्टीपर्पज हॉल, वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था, तो एक लेडी पुलिस यूनिफॉर्म में थी, क्योंकि लेडीज को मालूम होगा जब आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो आपके सिक्योरिटी चेक लेडी पुलिस करती है। तो एक लेडी पुलिस यूनिफॉर्म में मेरे पास आई और बहुत रो रही थी और स्लीपिंग पिल्स उनके हाथ में थी, बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां। उन्होंने आकर ऐसे मुट्ठी बंद की हुई थी और मेरे हाथ में वो स्लीपिंग पिल्स ऐसे करके मेरे हाथ में थमा दी। तो मैंने कहा बहन क्या चीज है ये? तो वो इतना रो रही थी उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनको देखकर कि ये हिम्मत करके दीदी के पास गई है, उन्हीं की साथी वो भी लेडी पुलिस मेरे पास आई, CISF की लेडी थी, तो उन्होंने कहा दीदी मैं बताती हूं क्यों रो रही है। ये अपनी लाइफ में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रही और कल इसने नींद की ढेर सारी गोलियां ली। मेरे साथ रहती है तो मैंने कहा ऐसे क्यों कर रही हो आप? कहा ये जो आपने ज्ञान दिया ना 1.5 घंटे का, ये मैंने शादी से पहले लिया था गुजरात साइड से। तो मैंने कहा अभी कहा मैं मैरिड हूं और मेरे हस्बैंड भी CISF में ही हैं पर वो बिहार साइड पोस्टेड हैं, मैं भी CISF में हूं, दिल्ली में हूं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो कहा मेरे जो दो बच्चे हैं ना, मैं उनको भी देखूं, 18 घंटे दिल्ली मेट्रो में भी खड़ी रहूं, जॉब करूं, और कभी कभी मेरी रिलीवर नहीं आती तो मुझे भी उसके बदले का काम करना होता है, तो बहुत ज्यादा मैं हैक्टिक हो जाती हूं, तो मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल बैलेंस नहीं बना पा रही, तो मेरे रहने का कोई मकसद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं अभी सेशन के बाद डिसाइड करते हैं, आप रेजिग्नेशन दे दीजिए CISF से। मैंने बड़ी खुशी उसको बोला, मैंने कहा रेजिग्नेशन दे देते हैं। कहती ऐसे कैसे रेजिग्नेशन दे देंगे, पूरी ट्रेनिंग लेकर मैं यहां पर आई हूं। तो मैंने कहा आपने तो कहा बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रही हूं, बैलेंस नहीं बना पा रही हूं, तो रेजिग्नेशन दो, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, दैट्स इट, इतना ही तो करना है। कहती नहीं वो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कहा अपनी फैमिली बनाना ये किसका डिसीजन था, पेरेंट्स का कि आपका? कहा मेरा डिसीजन था। तो मैंने कहा CISF में आना किसका डिसीजन था? कहा मेरा डिसीजन था। तो मैंने कहा ये डिसीजन भी तो आपका होना चाहिए कि बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। वो आपकी ये फ्रेंड बताएगी आपको कि बैलेंस कैसे बनाना है? तो वो थोड़ा सा उनके आंसू रुके, वो आराम से बैठी सोफे पर और लंच करके जब वो वापिस आई, आज मुझे बहुत खुशी है इस बात को 4 साल हो गए और आज वो हमारे शादरे के ब्रह्म कुमारी सेंटर से पूरी तरह कनेक्टेड है और बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। चैलेंज हर किसी के साथ आते हैं, बच्चे के साथ अलग चैलेंज थे जो भी बताया, बड़ों के साथ अलग चैलेंज आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति हम सब में है। लेकिन कुछ समय के लिए हम इतने अंधेरे में चले जाते हैं कि हमें वो शक्ति अपने में भीतर महसूस नहीं होती, और उस शक्ति को महसूस करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप यहां पर आए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सभी अपनी शक्ति को फील कर रहे हैं ना, कल से कितने एनर्जेटिक हैं। मैं जिस ट्रेन में आ रही थी परसों राजधानी में, तो आप पार्टिसिपेंट्स में से ही कुछ लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने उनको शायद डरा दिया था कि वहां जा रहे हो ना तो 3:30 बजे आपको उठा देंगे। तो मेरी बर्थ में वो बैठे हुए थे अगली सीट पर, तो उनमें से कुछ लेडीज पूछती हैं, दीदी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा माउंट आबू। तो कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं माउंट आबू जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? तो कहा हम तो नीचे जा रहे हैं शांतिवन में, कुछ टाइम शांतिवन का उनका स्टे था। तो हमने कहा हम तो ऊपर जा रहे हैं ज्ञान सरोवर। तो कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप तो नीचे रह जाएंगे, हम तो ऊपर जा रहे हैं, अब हमें 3:30 बजे वहां पर उठाएंगे, तो आप हमें ठीक कर सकते हैं ना, मतलब आप हमें ना उठाएं वो 3:30 बजे। तो मैंने कहा बहन ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, आपको वहां पर मन से इतना रिलैक्सेशन मिलेगा कि आप ऑटोमेटिक 3:30 नहीं 4 बजे उठ जाएंगे। कोई आपको रूम में उठाने आता है 4 बजे? अपने आप उठते हैं ना। आज आप में से कौन कौन ऑटोमेटिक उठे? रेज योर हैंड्स। बाबा ने उठाया, कितनी अच्छी बात है, तालियां बजाएंगे उस परमात्मा के लिए, क्योंकि इस एकेडमी का वातावरण आपको उठाता है, यहां का ज्ञान और यहां की प्योर वाइब्रेशंस आपको उठाती हैं, यहां परमात्मा की जो शक्ति, यहां हम डेडिकेटेड ब्रदर्स और सिस्टर्स की जो शक्ति, उनकी आत्मिक बल आपको उठाता है, और कोई आपको नहीं उठाता है। और हम ये चाहते हैं कि आप कुछ समय के लिए जो यहां पर आए हैं, आप वो शक्ति यहां से लेकर जाएं, क्योंकि जब आप अपने घरों में जाएंगे आप फिर से उन्हीं चैलेंजेस के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई घर की कोई और प्रोफेशनल या पर्सनल प्रॉब्लम तो शायद याद नहीं आ रही होगी। आ रही है किसी को यहां पर? हाँ, घर वाले भी कहते हैं पता नहीं कहां चले गए, आप तो फोन ही नहीं करते, कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़े टेम्परेरी पीरियड के लिए आप यहां पर आए हैं, बट यहां से परमानेंट एक शक्ति लेकर जाना, राइट? आज देखिए प्रेजेंट डे लाइफ, आज जो वर्तमान की लाइफ है वो इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी और डिफिकल्ट? ओके, आप में से कौन कहते हैं कि इजी है आज लाइफ? ओके, 10-12 हैं बस। ओके, डिफिकल्ट? ओके, जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं उठाया वो कौन सी कैटेगरी में है? ना इजी कह रहे हैं ना डिफिकल्ट कह रहे हैं, तो समटाइम्स इजी और समटाइम्स डिफिकल्ट। ओके, ये आंसर भी बेटर है कि समटाइम्स इजी लगती है जब हमारे मुताबिक काम होता है, राइट? मेरे मन मुताबिक काम होता है तो इजी है, और मेरे मन से विपरीत जब कोई बात आ जाती है या कोई मेरा कहना नहीं मानता तो वो डिफिकल्ट लगती है। लेकिन आंसर यही है कि आज प्रेजेंट डे लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डेली जॉब मूड सेट वर्क, मंडे का अपना मूड देखिए जरा, जब आप जाते हैं ओ माय गॉड अभी तो 5 डेज, 5 और 6 डेज का योगा 7 डेज भी होता है, मैडम संडे को भी बुला लेते हैं। तो मंडे का मूड क्या रहता है, ट्यूसडे का मूड, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ सैटरडे खुशी, संडे आने वाला है, खुशी है ना, संडे आने वाला है, और संडे नाइट माय गॉड अब तो मंडे से फिर से शुरू करना है 1 वीक, तो कितना हॉरेबल रहता है। लेकिन ये सारे मूड्स एक अच्छे मूड पर सिमट सकते हैं, दैट इज सैटरडे। हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ या ना? है ना, हो सकता है। डिपेंड्स हम सब पर करता है कि मुझे अपने मन को किस तरीके से चलाना है। तो आज हमारी लाइफ देखिए कैसी हो गई है। अब हम आते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हमें मालूम है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि आपके जीवन के चैलेंजेस क्या हैं। सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज द नॉलेज ऑफ द स्पिरिट। सेल्फ के बारे में नॉलेज है, स्व के बारे में ज्ञान है, मैं हूं कौन। शायद ये राजयोग का सेशन आज आपका हुआ होगा, हो गया सबका हुआ है ना, कि मैं हूं कौन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इस आध्यात्मिक वातावरण में आते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पाते, साथ साथ एक्सपीरियंस भी करते हैं। कितनी बार हमने सुना होगा, हमारे टीवी सेट पर बहुत सारे आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल हैं जिनमें हमने सुना आत्मा होती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा एक शक्ति है जो इस हड्डी मांस के शरीर को चलाती है, बट कभी एक्सपीरियंस किया कि मैं ही वो आत्मा हूं? दैट इज मेडिटेशन। हाउ यू कैन एक्सपीरियंस दैट यू आर ए सोल? मैं कैसे उस चीज को अनुभव करूं कि मैं ही एक आत्मा हूं? उसको आप यहां अनुभव करते हैं कि मैं एक चमकता हुआ सितारा, मस्तक के बीचों बीच एक आध्यात्मिक चेतन बिंदु हूं। और जब आप इसकी नॉलेज को अनुभव करते हैं तो आपके लाइफ का हर संघर्ष, हर चैलेंज आप बहुत सुंदर तरीके से उसको फेस करके आगे बढ़ सकते हैं। इतनी शक्ति आत्मा में है। लेकिन आज हम अपने आप को ऑपोजिट वे में लेकर जाते हैं। नो, आई एम नॉट दिस सोल, आई एम दिस बॉडी ओनली। क्योंकि दर्पण में तो यही दिखता है कि नहीं, मैं शरीर हूं। लेकिन यहां पर आध्यात्मिकता में हमें समझ में आया कि मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूं। जब भी हम इस शरीर के विषय में बात करते हैं तो हमने हमेशा पढ़ा था, छोटे स्टैंडर्ड में ही हमें पढ़ा दिया था, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग, उनके विषय में हमें बताया गया था। बट हमें मन के विषय में किसी ने आज दिन तक नहीं बताया, बुद्धि के विषय में किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो शरीर के अंग नहीं है। दैट इज द फैकल्टीज ऑफ द सोल, आत्मा के अंग है वो। आज आपने पढ़ा होगा उसको विस्तार से कि आत्मा की तीन शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आज मन इतना इरिटेटेड क्यों है? आज मन इतना उलझन में क्यों रहता है? आज मन इतना अशांत क्यों रहता है? आपको मालूम हो कि आज हमारे हर ब्रह्म कुमारी सेंटर पर जो भी आते हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के कारण आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही समाज में ये है, सब कुछ है बट स्टिल डिप्रेशन नहीं जाता, स्टिल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज मन बहुत कमजोर होता जा रहा है। आज आपको यहां पर फिजिकल एक्सरसाइज कराई गई और आप सभी, क्योंकि कोरोना के बाद सबको इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस रहती है कि बॉडी के विषय में, कि बॉडी एकदम स्वस्थ होने चाहिए, तो 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स लेडीज भी एक्सरसाइज किसी न किसी तरीके से करते हैं, बट वो टोटली शरीर को स्वस्थ रख रही है। लेकिन मन को स्वस्थ रखने की कौन सी एक्सरसाइज है? वी डोंट नो। दैट इज ओनली द मेडिटेशन प्रोसेस। इस मेडिटेशन को भी अगर हम 5 मिनट अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो मन भी दुरुस्त और शरीर तो है ही तंदुरुस्त, राइट? तो मेडिटेशन जो आप यहां से सीख कर जाएंगे उसको आप जरूर जीवन का हिस्सा बनाइएगा। मन को शक्तिशाली रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक और छोटा सा ड्रिल आपके लिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जहां क्वेश्चन मार्क है। ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है कि जहां क्वेश्चन मार्क है वहां क्या आंसर आना चाहिए। डायरी पेन है सबके पास, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जिनका हो जाए वो करेक्ट आंसर बता सकते हैं। यस गर्ल, 10, ओके, 7, 12, 9, 19, 27, 12, sorry, 12, 9, 22, 19, 10. नीचे छोटा सा लिखा हुआ है 90% गॉट दिस रॉन्ग, 90% रॉन्ग आंसर देंगे. 10, 17, 19, 20, 27, 8, 28. और अगर मैं ये कहूं ये सारे आंसर रॉन्ग है तो 9.5. माय गॉड, सॉरी, 10 इज द करेक्ट आंसर. ओके, चेक करें. ओके, देखिए ऊपर स्वॉर्ड दी गई है, तलवारें हैं, ठीक है, प्लस का निशान है, 9 हो गया, राइट. वन बाय वन चलेंगे, बहुत ज्यादा हम जल्दी नहीं करेंगे, तभी समझ में आएगा. फिर तीन तलवार है और एक कैन है, ठीक है, दो कैन प्लस, तो एक कैन की वैल्यू कितनी हुई, हाँ, तो 13 आ गया, ठीक है. अब थर्ड रो में देखिए, 5 है ना, एक कैन की वैल्यू 5 है और दो स्कल है, खोपड़ी दिखाई हुई है, कितना हो गया वैल्यू, हाँ, तो 1 आ गया, ग्रेट. लास्ट में आइए, अब कुछ मैं बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ हुई थी. कुछ ने सोचा कि ऊपर जो तीन तलवार है ना, तो नीचे भी तीन ही होंगी, जबकि हैं कितनी, 4 हैं. कुछ ने सोचा कि ऊपर 2+ है तो नीचे भी 2+ है, जबकि है कौन सा, मल्टीप्लाई है, ठीक है. अभी देखते हैं, 1, 5, 2, ओके, तो 2+5 × 4 इज इक्वल टू, हाँ, 22 किसने बोला था, यहां से बोला था किसी ने, यहां से बोला था, आप खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए अपनी सीट पर, जिन्होंने 22 बोला था, हाँ, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए, अभी भी जोरदार तालियां नहीं है. क्योंकि मैथमेटिक्स में जब 5 और इंटू यानी मल्टीप्लाई होता है, तो पहले मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करते हैं, देन हम प्लस की वैल्यू में जाते हैं, तो 22. अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम देखिए क्या थी, बीइंग इन प्रेजेंट. रॉन्ग आंसर्स क्यों आ रहे थे, क्योंकि आप वर्तमान में नहीं थे, आप जल्दी जल्दी जंप कर रहे थे. वर्तमान में रुक कर देखें कि जहां तीन तलवार है नीचे 4 तलवार हैं, राइट, तो प्रेजेंट में नहीं थे. जंपिंग टू कॉन्क्लूजन और अजम्पशन, एज्यूम कर रहे हैं, ऊपर था ना तो नीचे भी वही होगा, ऊपर प्लस था तो नीचे मल्टीप्लाई कहां से है, प्लस ही होगा, एज्यूम कर रहे थे, नॉट सीइंग द ओवरऑल पिक्चर. हम छोटी क्लास में थे तो मदर क्या सिखाती थी, बच्चे जब भी एग्जाम पेपर सामने आए तो पहले पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो. कोई बात नहीं, अगर हम 2 मिनट 3 मिनट पढ़ने में लगा देंगे तो आंसर करेक्ट देंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं तो हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं. तो इसलिए नोट सींग दी ओवरऑल पिक्चर, तो हमने वो देखा नहीं, तो इसलिए हमारे आंसर्स भी करेक्ट नहीं होते हैं. नेक्स्ट, द बिगेस्ट मिस्टेक बाय मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर लिसनिंग हाफ, अंडरस्टैंडिंग क्वार्टर और टेलिंग डबल. अब आप देख लीजिए क्या नेचर है. डबल बोलना है, समझना ज्यादा नहीं है. और इसलिए आज जो ज्यादा हम कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो उसका ज्यादातर यही बेस होता है कि हम क्यों, हम शायद समझते नहीं है शब्दों का भाव, शायद हम सामने वाले की भावना को, वृत्ति को अच्छे से नहीं महसूस कर पाते, शायद हम उन शब्दों को रॉन्ग वे में ले जाते हैं। तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स हम रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। कर्मा, यकीन मानिए जब हम किसी संघर्ष से जूझ रहे होते हैं तो उसमें कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारे पास्ट में जो कर्म रहे, जो हमारे पास्ट में जो हम कर्म कर चुके होते हैं उसी का रिजल्ट हमें प्रेजेंट में मिलता है, राइट और रॉन्ग। अगर हम इस कर्मों को, इसकी गुह्य गति को बहुत सुंदर तरीके से पहचान लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति को फेस कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। और यहां आध्यात्मिक ज्ञान में आज आपका फर्स्ट सेशन हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब आपके इसके राजयोग के सेशंस आगे बढ़ेंगे तो आपको कर्मों की बहुत सुंदर नॉलेज यहां से मिलेगी कि क्यों कोई व्यक्ति के साथ मैंने बहुत अच्छा किया लेकिन फिर भी वो मेरे साथ गलती कर रहा है, क्यों किसी व्यक्ति को मैंने कुछ नहीं दिया लेकिन वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देता ही रहता है। आप जीवन में देखेंगे कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति टकराते हैं जब हम देखते हैं कि इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरे अपने हैं। एनर्जी बहुत पॉजिटिव उनसे महसूस होती है क्योंकि पास्ट में हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है और शायद आज के ब्लड रिलेशंस भी इतने करीब महसूस नहीं होते जितना कोई स्ट्रेंजर महसूस होता है। तो शायद उस ब्लड रिलेशन भी जो आज नेगेटिविटी का कारण है वो पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो उसको क्या करें, क्या करें अगर कुछ ऐसा हो है हमारे लाइफ में, तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर व्यक्ति को हम शुभ भावनाएं दें। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है, कोई मेरे लिए नेगेटिव कुछ हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, कुछ मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए मैं शुभ भावनाएं कैसे दूं। लेकिन अगर वाकई में अपने इस अकाउंट्स को बैलेंस करना है, वाकई में इस अकाउंट्स को, कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करना है, तो जरूर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देना शुरू करें। तो आप देखना वो कड़ा कर्म कितनी जल्दी कटता है। हमारे जितने भी यहां पर डेडिकेटेड भाई और बहनें रहते हैं, उन्होंने इन सबको, इन सारी चीजों को, धारणाओं को अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए बहुत डेडिकेशन के साथ कह पाते हैं कि ये युक्ति काम करती है। क्योंकि हम सबको इन सारी चीजों का ज्ञान नहीं है, लेकिन इस आध्यात्मिक नॉलेज से हम सबको इस बात से अवगत कराया जाता है कि कर्मों की गुह्य गति जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। हमारी आदरणीय उषा देवी जी, जो कि शांतिवन कॉम्प्लेक्स में रहती हैं, नीचे शांतिवन तलहटी में हमारे बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है, वहां पर वो रहते हैं। वो बता रहे थे एक बार जब एक किसी घर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था तो दीदी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। तो वहां पर क्योंकि सभी अपनी अपनी जो भी उनको कार्य दिया गया था, बड़े उसमें व्यस्त थे, तो छोटे बच्चे एक रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और कुछ कार्टून सामने चल रहा था। तो जब दीदी जी बैठे उस रूम में जाकर, तो दीदी ने पूछा कि आप बहुत ज्यादा एकाग्रता से सारे बच्चे टीवी सेट पर देख रहे हैं, आज क्या ऐसा आ रहा है। कहते हैं दीदी आपको बाद में बताएं, अभी थोड़ा देखने दो, डोंट डिस्टर्ब। तो बच्चे फिर से एकाग्र हो गए उस चीज को देखने के लिए। तो 20 मिनट बाद जब वो खत्म हुआ, जो भी सामने टीवी सेट पर चल रहा था, तो दीदी ने पूछा क्या था। तो कहा दीदी आज ये सारी सीरीज जो 90 एपिसोड्स की सीरीज थी, इसका आज रिजल्ट डिक्लेयर होना था, पता चलना था कि ये सारी 90 सीरीज के पीछे बैकबोन कौन था, तो हम इसलिए बहुत ज्यादा एकाग्रता से देखा, तो हमें बड़ा मजा आया। तो दीदी ने उसको रिलेट किया, देखिए कैसे, कि आज जो प्रेजेंट में जो भी आज हमारे जीवन में घटित हो रहा है इसका कारण हम नहीं जानते, लेकिन जब हम पीछे की सीरीज में जाते हैं, यानी पीछे पास्ट बर्थ में जो मेरे रिलेशनशिप रहे हैं, या जिनके संपर्क में मैं आई हूं उनके साथ मेरी एनर्जी एक्सचेंज नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा मुझे नहीं पता, लेकिन आध्यात्मिकता में हमें ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। जैसे उन बच्चों को उस सीरीज को देखने में 90 एपिसोड के बाद बहुत मजा आ रहा है कि क्या होना था, कौन था व्यक्ति, कौन नहीं था। ऐसे ही आध्यात्मिकता में हमें बहुत अच्छी रीति समझ में आता है कि मैं क्या सोच रही थी किसी के विषय में और मुझे क्या करना चाहिए था। ये क्लियर नॉलेज आपको यहाँ के राजयोग से और ज्ञान से प्राप्त होगा, राइट? Whatever I get in present life, I get because of my own action. आप believe करते हैं इन सारी चीजों पर, है ना? मेरे ही कमाया हुआ है जो आज मुझे प्राप्त हो रहा है, किसी ने मुझे लाकर कुछ नहीं दिया है और ना ही कोई दे सकता है। मैं डिजर्व करती हूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है, और मैं डिजर्व नहीं करती तो आप पूरे जीवन भर उस चीज को प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ होगा? सिर्फ हम अपने को परेशान करते हैं, सिर्फ हम एक चीज की प्राप्ति के पीछे भाग रहे हैं जो शायद परछाई की तरह मुझसे भी दूर भाग रही है। तो इसलिए जो भी आज हमारे पास है उसकी प्राप्ति में हम खुश रहें और उस प्राप्ति को ही आगे लेकर बढ़े। ये बहुत सुंदर बात है कि जो आज हमारे पास है हम उससे खुश रहें। जैसे रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी डायरी में लिखा कि जो भी मेरे पास उपलब्ध है उसके लिए मैं परमात्मा को शुक्रिया अदा करता हूं। तो कभी आपने इस चीज को महसूस किया, जो मेरे पास है उसकी प्राप्ति के लिए मैं भगवान को शुक्रिया करता हूं? करते हैं? कौन कौन करते हैं? सभी करते हैं। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनका क्या सोचे हम? वो महसूस करते हैं। अच्छा, कहते नहीं हैं, महसूस करते हैं, मन से शुक्रिया करते हैं। तो इसलिए आज जो भी आपके पास है एक पॉजिटिविटी के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करना ना भूलें, क्योंकि ये जो ग्रैटिट्यूड की भावना है बहुत अच्छी भावना है। ग्रैटिट्यूड, किसी ने आपके लिए कुछ किया, थैंक्स करिए। लेकिन यहां जब आप आए हैं ना, तो यकीन मानिए इस धरती पर आना और इस पवित्र भूमि पर कदम रखना ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं हो सकता, किसी निमित्त टीचर का काम नहीं हो सकता। उस परमात्मा की ही चॉइस थी, स्पेशल सिलेक्शन था आपका कि इतने सारे हर्डल्स के बाद ट्रेनें कैंसिल हो गई, हमारे स्पोर्ट्स विंग के जो चेयरपर्सन हैं वो हुबली से आने वाले थे, 22 घंटा ट्रेन लेट हो गई लेकिन वो नहीं आ पाए, लेकिन आप सब आ पाए। आप सब अपने लिए भी तालियां नहीं बजाते हैं, इस बात का मुझे बड़ा तो सेशन के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं। अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन ईसीजी मीन्स वी आर नॉट अलाइव, वी आर टोटली डेड, राइट? स्क्रीन पर जैसे डॉक्टर्स देखते हैं, अरे स्ट्रेट लाइन आ गई, सांसें रुक गई, व्यक्ति डेड। तो इसलिए अप्स एंड डाउन्स छोटे बचपन से ही हम फेस करते हैं और हमें सिखाया जाता है कि ये लाइफ का एक हिस्सा है। इसलिए चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इसमें महानता है। चैलेंजेस आए ही ना, हमें छोटे जब बचपन में हमें सिखाया गया था कि अगर आप 9th क्लास में एग्जाम नहीं देंगे तो आप 10th में कैसे जाएंगे, जा सकते हैं? तो उसको तो फेस करना ही पड़ेगा ना। ऐसी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस को जरूर फेस करना पड़ेगा। और ये बहुत सुंदर बात है कि अपने मन को हम सशक्त बनाएं, और मन को सशक्त बनाने की एक ही एक ड्रिल है, दैट इज मेडिटेशन। मन को सशक्त बनाना है तो हम लास्ट के हिस्से में आपको यही कराना चाहेंगे कि यहां जब आप आए हैं तो आत्मिक स्थिति को आप अनुभव करें। एक छोटा सा बाबा रूम हमने बनाया है, उस बाबा रूम में बैठकर सुबह शाम थोड़े से अपने मन को शांत करें बैठकर, और अपने से बातें करें कि मेरे जीवन में कौन सा संघर्ष ऐसा है जिसको मैं ओवरकम नहीं कर सकता हूं, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात आज चल रही है जो मैं बहुत ज्यादा बीसों नाखूनों का जोर लगाकर भी उसको ठीक नहीं कर सकता हूं। उसको एक छोटी सी चिटकी बनाए, चिटकी मीन्स लेटर, और वहां लेटर बॉक्स रखा है वहां डाल दें। आप जब तक अपने घर पहुंचेंगे वो सब ठीक हो चुका होगा। इस पे भी तालियां नहीं बज रही हैं, बताओ। यकीन मानिए सब ठीक हो चुका होगा, ये जरूर करके जाना, ठीक है, जरूर करके जाना। ऐसे कोई नहीं कहेगा आपको, लेकिन परमात्मा सुन रहा है कि आप यहां पर आए हैं तो जरूर कोई ना कोई बात है, और भगवान उसको जरूर साथी सहयोगी अपना बना लो, उस परमात्मा को वो सब ठीक करेगा। तो चलिए 3 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं। मैं मेडिटेशन कमेंट्री से जरूर आपको अपने मन को कैसे सशक्त रखना है ये कराना चाहूंगी। आराम से बैठें। चारों ओर से पूरा ध्यान मस्तक के बीच में समेट लें। छोटा सा निराकारी बिंदु आत्मा, मैं सितारा, मस्तक के बीच में चमक रहा हूं। शांत हूं, एकदम रिलैक्स। परमात्मा की संतान हूं, शांति का सितारा हूं। मन ही मन में जो भी बात मन को परेशान कर रही थी उसे परमात्मा को सौंप दे। हे ईश्वर, हे जिहोवा, हे अल्लाह, हे गॉड फादर, ये चैलेंज, ये संघर्ष है आज मेरे जीवन में, इसे आप संभालो। मेरे मन का बोझ आप रख लो, देखकर फ्री हो जाए उस परम शक्ति से, शक्ति ले ले। मन को हल्का कर ले, बैठ जाए उनके सानिध्य में, वो सर्वशक्तिवान है। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं,
शांति। एक ही लाइन में बोलूंगी, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम।
तो दीदी जी, बहुत अच्छे इनपुट हमने सेशन से लिए हैं एंड हम सभी ने सीखा है। आई रिक्वेस्ट कि आफ्टर इन लंच आप उसको अपनी डायरी में नोट कीजिए, बिकॉज जो हमारी मेमोरी होती है वो इरेजेबल होती है. तो जो भी हमने आज सीखा है और जिन्होंने नोट्स लिए हैं वंडरफुल, उसको रिवीजन बहुत जरूरी है. और मेन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. आई एम श्योर ईच ऑफ अस विल चेंज आवर लाइफ विद दिस वंडरफुल सेशन. थैंक यू सो मच.